अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर।
नमस्कार दर्शकों, नैतिक मूल्यों की यात्रा में आपका फिर एक बार स्वागत है। हर बार हम आपके समक्ष एक नए नैतिक मूल्य को चर्चा में लेकर उपस्थित होते हैं, तो आज भी हम एक ऐसा ही नैतिक मूल्य लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है दूरदृष्टिता। और हमारे साथ इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारी हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन। ओम शांति अनीता।
ओम शांति।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, बीके अनीता बहन चंडीगढ़ से हैं और पिछले 34 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई है और 26 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। आपने बहुत सारे मेडिटेशन विषय पर लेक्चर्स भी दिए हैं। आपका एक बार फिर से दर्शकों की तरफ से, हम सब की तरफ से स्टूडियो में स्वागत है।
धन्यवाद
दीदी। आज हमारी चर्चा का विषय है नैतिक मूल्य, जिसको हम आज कुछ चर्चा करेंगे दूरदृष्टिता। जैसे कि नाम से ही हम जानना चाहेंगे कि इसकी क्या परिभाषा होगी, दूरदृष्टिता है क्या, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे?
कोई भी मनुष्य जो भी जीवन में कर्म करता है तो हर एक कर्म का कुछ प्रभाव होता है, और जो आज हम देख नहीं पा रहे हैं, जो कुछ समय बाद निकल करके सामने आने वाला है, तो दूरदर्शिता एक ऐसा गुण है जो आत्मा के अंदर की वो क्वालिटी है जो पर्दे के पीछे की चीज को समझ सके। जो वक्त का पर्दा है बहुत बड़ी ताकत है। जैसे एक समझदार किसान है तो वो जानता है कि जो मैं आज एक बीज डालने वाला हूँ इससे अनार पैदा होगा या आम पैदा होगा, और एक बीज से अनार या आम पैदा होने तक रास्ते में क्या क्या उसको सफर तय करना पड़ेगा, किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, उस सारे को जो एडवांस समझ करके उसकी तैयारी करके उसके अनुकूल काम करे तो उसको दूरदर्शिता कहा जाएगा। यानी दूर की बात को समझ करके उस अनुसार कर्म करना। अगर मानव उस अनुसार नहीं चलता है तो बहुत जगह धोखा खा लेते हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्म के फल के परिणाम स्वरूप जो किस्मत बनती है, जैसे कई लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत ही खराब है। अब किस्मत क्या चीज थी? जब कुछ किया था तब सोचा नहीं कि उसका आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, और जब रिजल्ट निकल आया तो उसको हमने कह दिया किस्मत खराब या किस्मत ठीक। तो ये कर्म और फल वहां तक पहुंचने के एक सफर की अंदर की एक समझ है, उसको हम दूरदृष्टि तो, या दूरदर्शिता कह सकते हैं।
मैं पूछना चाहूंगी हम ये निर्धारित कैसे करें, जैसे अभी आपने कहा कि जो हम आज बोएंगे वही कल फल मिलेगा, कैसे हम निर्धारित करें
कि फल कैसे मिलेगा?
जी, सही गलत, क्योंकि जो हम आज बो रहे हैं उसको हमें कुछ परख शक्ति भी चाहिए कि हम क्या बो रहे हैं, उसका क्या फल हो सकता है आगे, तो उसको निर्धारित कैसे करें ये क्वालिटी लाने के लिए?
इसके लिए हमें विशेष रूप से चाहिए अंदर की स्वच्छता।
बिल्कुल,
जिस तरह से देखो अगर पानी है, पानी के अंदर कुछ रखा है तो कैसे दिखाई पड़ेगा? जब वो मैला ना हो और ठहरा हुआ हो। पानी अगर तालाब का बहुत लहरों वाला है तो भी अंदर कुछ रखा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी मैला तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मन है, तो मन के अंदर जितनी अधिक मैल है उतना अधिक वो आने वाले समय को, आने वाली बातों का अंदाज नहीं लगा सकता है। जिस तरह से समझो कि मेरे मन में अगर आपके लिए कोई मैल है कि मैं इनको ऐसा बोलूं कि इनको नीचा दिखा दूं, तो मैं दूर तक जाकर के आपके प्रति जो एक अच्छा संबंध बनाना है वो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी मैल आपके और मेरे संबंध के बीच में एक दीवार की तरह आ जाएगी। जैसे पानी की मैल चीज के लिए दीवार बन जाती है। दूसरा, मेडिटेशन में जैसे हम करते हैं, अपने मन को स्लो डाउन करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना मन स्लो होता है, जैसे पानी ठहरा हुआ वाला है, उतना आप आने वाली समय में इस चीज का क्या रिजल्ट हो सकता है उसको ठीक तरीके से देख सकते हैं। अदरवाइज देखना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो चीज वक्त के पर्दे के पीछे है।
जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कभी कभी हम जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं, देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, तो उस समय हम कैसे इसको बैलेंस करें?
बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं। तो एक होती है परखने की शक्ति, दूसरा होती है निर्णय शक्ति। यानी हमने परख लिया है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मीन्स जानते हैं, फिर भी नहीं जानते मीन्स हमारे अंदर उसको कर्म में उतारने की शक्ति नहीं है। तो कर्म में उतारने की शक्ति तब आती है जब अंदर हमारी जजमेंट्स बहुत क्लियर हो, और जजमेंट को क्लियर करने के लिए हमें करेज की जरूरत होती है, और दूसरा हमें बहुत अच्छी सी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लॉ का एम्बलम बना हुआ है, लॉ के एम्बलम में दिखाया है कि वो कानून की देवी के हाथ में तराजू है और आंख पर पट्टी बंधी हुई है। तो राइट जजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आंख पर पट्टी बांध ली जाए। अब कौन सी आंख पर पट्टी बांधनी है? वो आंख है हमारी जो मेटेरियलिस्टिक एप्टीट्यूड है, जो हमारी बाह्य दृष्टि है। किसी भी चीज को हम बाह्य रूप से अगर तोलते हैं तो उसका ठीक निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पुराने जमाने में क्या होता था, राजा लोग न्याय करते थे, तो राजा को न्याय करने से पहले उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती थी। अब कोई भी उसकी सभा में आएगा, चाहे राजकुमार आए चाहे आम प्रजा का कोई व्यक्ति आए, दोनों के लिए राजा को बराबर न्याय करना है। तो ऐसे ही ठीक निर्णय कर पाने के लिए कि हम जानते हुए फिर भी नहीं जानते, मीन्स करने की ताकत नहीं है, उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत होती है कि जो भी हमारी बाहरी इच्छाएं हैं, आदतें हैं, उससे अपने आप को डिटैच कर पाएं। कुछ खाने की भावनाएं, किसी के प्रति बहुत गहरा लगाव, किसी के प्रति बहुत गहरी घृणा दृष्टि, या अपने लिए बहुत लग्जूरियस हो जाना, इस तरह की जो बातें होंगी वो हमारे को दूर तक के रिजल्ट जानने के बावजूद भी उसको करने की ताकत नहीं देंगे। जैसे बच्चा पढ़ने वाला है, उसको मालूम है कि मैं ज्यादा सोऊंगा, कम पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, पर उसके अंदर एक आलस्य का संस्कार है, उसको बिस्तर पे लेट के अच्छा लगता है, तो वो उसको ओवरकम नहीं कर सकता, कम पढ़ता तो फेल हो जाता है।
बिल्कुल ठीक।
तो इसको कहेंगे कि जानते हुए भी जान नहीं पाते।
जी जी, जैसे अभी आपने बताया कि दूरदृष्टिता के लिए हमें परख शक्ति चाहिए। जब तक हम परखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और उसका कुछ लाभ है या फायदा है। तो ऐसी और कौन कौन सी क्वालिटीज की जरूरत है इस दूरदृष्टिता को अपने वृत्ति में और लाने के लिए?
इसके लिए चाहिए हमें पेशेंस।
जी,
धैर्य बहुत चाहिए, क्योंकि कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, और जो जल्दी खा लेते हैं वो कच्चा फल होता है, वो कड़वा होता है और पेट को खराब करता है। और पेशेंस के बिना आप दूर तक की बात को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हर एक चीज जो भी आज हमारे सामने है उसका एक पास्ट भी है, उसका एक फ्यूचर भी है। इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ कि हम शेख चिल्ली की तरह भविष्य में जीते रहें, कि शेख चिल्ली को आज दो पैसा मिलेगा, जी अंडा लाऊंगा, मुर्गी खाना बनाऊंगा, ठीक एनालाइज करें उस चीज को, और उसमें एक पास्ट भी जुड़ा हुआ है। आजकल के मनुष्य का क्राइटेरिया क्या हो गया है, ज्यादातर पास्ट में जीता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट निकाली गई है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 65% थॉट्स पास्ट के करता है, 30% थॉट्स फ्यूचर के करता है, 5% थॉट्स प्रेजेंट के करता है। जबकि होना ये चाहिए कि आपको 100% प्रेजेंट में रहना है। जो 100% प्रेजेंट में रह सकता है वो दूर के लिए ठीक तैयारी कर सकता है। अब आम लोग हमको कहते हैं कि पास्ट से हम निकल नहीं पाते, जो निकल नहीं पाता है वो फ्यूचर को ठीक देख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पास्ट का कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, उसके लिए जो हम मेडिटेशन में यहाँ पर सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि पास्ट समझो आपका बहुत बुरा था
जी,
मन निकलता नहीं है उससे, टेक सम बेस्ट फ्रॉम द पास्ट एंड यूज इट राइट नाउ
पॉजिटिव वे में जी।
पास्ट बहुत अच्छा था, आज उतना अच्छा नहीं है, टेक सम बेस्ट फ्रॉम द पास्ट देन ऑल्सो यूज इट राइट नाउ, अच्छा था या बुरा था उससे कुछ सीख करके अब ऐसा यूज करो जो फ्यूचर के लिए अच्छा तैयार करो
जी।
पर कैसा तैयार करो, फ्यूचर के लिए प्लान करके
जी।
वो प्लानिंग आप आज से शुरू कर दो, अगर आप उसको आज नहीं कर रहे हैं देन फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शेख चिल्ली हो जाएंगे
जी।
कि जो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता है, हवाई किले बनाता है, लेकिन उसके अंदर रहना नहीं जानता है,
प्लानिंग नहीं आता,
प्लानिंग नहीं उसको आती है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि फ्यूचर को प्लान करके आज उसको एग्जीक्यूट करो, लिव वन डे एट ए टाइम एंड मेक इट अ मास्टरपीस
जी।
एक बार में एक दिन ऐसा प्लान करो जो पूरा यूटिलाइज करके फ्यूचर तक जाकर के उसका इफेक्ट पड़े
जी।
तो जरूरी बात है, हमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि अभी अभी रिजल्ट तो नहीं निकलता है, लेकिन अभी अभी जो आप जमा करते जा रहे हैं उसको आप साथ साथ एनालाइज कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है कि अभी अभी जो आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर तक जाकर के क्या इफेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा, वो हम चेक करते हैं अपने अंदर की प्योरिटी से
जी।
कि अंदर से अगर मैं निर्मल आत्मा हूँ, किसी के लिए वैर नहीं है मेरे हृदय के अंदर, किसी को नीचा दिखाने की या कम्पीट करके आगे बढ़ने की भावनाएं नहीं है, तो ऐसा कर्म मेरे को इमीडिएट लाइटनेस की फीलिंग देता है। मेरी एक इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लाखों को सुख मिले, ऐसी अगर मेरे अंदर एक इच्छा है और फिर आज जो मैं उसके लिए कर रही हूं मुझे लग रहा है कि किसी को भी सुख मिला तो है नहीं, लेकिन वो मेरा एफर्ट एक सीड अंदर चला गया और उसका रिजल्ट आएगा जरूर
जी। जी, मन साफ होना जरूरी है तभी हमें क्लियर होगा विजन दूर का कि कैसा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये नैतिक मूल्य हमारे जीवन में, अगर ना हो तो क्या नुकसान भी हो सकते हैं?
बहुत नुकसान हो सकता है कि अगर हम दूरदर्शी नहीं हैं तो हमने देखा है बहुत लोग ऐसे हो गए हैं, खाओ पियो करो आनंद, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, टुमारो यू विल डाई, तो कल का कोई भरोसा नहीं है, ये कह करके आज सारा सुख पाने के लिए सब कुछ आज ले लेने के लिए वो इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि सारे एथिक्स भूल गए हैं। उनको जो आनंद चाहिए आज चाहिए एट एनी कॉस्ट, उसके लिए वो एडिक्ट होते जा रहे हैं, उसके लिए वो लस्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, उसके लिए वो रिलेशंस को ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि वो दूरदर्शी नहीं है। आज सब कुछ उड़ा देते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता। एक रईस का बेटा 100 रुपए के नोट का सिगार बना के पी रहा था, क्या हुआ? कहते बाप का माल बहुत है, वो आज तुम पी रहे तब तक पिएगा
जी,
क्योंकि वो दूर की नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए इकोनॉमिकली भी नुकसान होता है, एथिकली भी नुकसान होता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है।
मैं पूछना चाहूंगी रिश्तों में, संबंध संपर्क में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आज जैसे हम देखते हैं आजकल के जो बच्चे हैं मैनर्स जो पहले के जमाने में जिस तरह के थे, तो आजकल माँ बाप भी टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सोच नहीं पाते हैं उनके भविष्य के बारे में उतना दूरदृष्टि से। तो मैं जानना चाहूंगी संबंधों में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका?
बहुत अधिक महत्व है, जैसे आपने बात की है पेरेंट्स और बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि आज हम पैसा खूब कमा लें कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे इनके ही काम आएगा, इनके लिए मकान बनाएंगे, विदेश पढ़ने भेज देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उनको ये भूल जाता है कि हमने जो इतना पैसा कमाया है वो बच्चों की वैल्यूज को दांव पे लगा के कमाया है। बच्चे क्रच में पल रहे हैं, बच्चे आया के पास पल रहे हैं, या बच्चे टीवी के पास पल रहे हैं
जी,
पैसा कमा करके जो मीडिया के थ्रू उनको वॉइसेस मिले, जो कहीं वल्गैरिटी में वो लोग चले गए, कहीं गलत कंपनी में चले गए,
परिणाम से अनजान है,
तो वो वही बच्चे आज हम देख रहे हैं बड़े होकर के उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रख देते हैं कि अब हमको कमाना है, अब हमारा टाइम है मौज करने का, तो उससे वो वैल्यूज उनके अंदर नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए। खास तौर पर हमने देखा है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स इस तरह की आ जाती हैं, जो दूरदर्शी नहीं है, आज आज का सोचते कि आज मेरे को मजा आ जाए, तो आज हम ये वाला काम कर लें, तो वो हस्बैंड वाइफ का आपसी संबंध भी उसमें दरकिनारे हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो अपने बुजुर्गों के द्वारा लिए हमारे अंदर रिगार्ड होना चाहिए, वो नहीं उसकी तरफ ध्यान दे पाते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट में एंजॉय करना ही जीवन नहीं होता। हमने ये देखा है कि आज अगर हम किसी बात में थोड़ा त्याग करते हैं, आज किसी बात में हम झुक जाते हैं, आज किसी बात में हम दूसरे से एक कदम पीछे रह जाते हैं, तो आने वाला समय हमें इसका फ्रूट देता है जरूर।
बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं दीदी, लोग ये सब मानते हैं कि विचार शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आज दुनिया में जितने भी नई नई चीजें ईजाद हुई है वो विचार शक्ति से हुई है, वैज्ञानिकों के और बड़े बड़े लोग, तो उन लोगों ने देखा होगा अपनी दूरदृष्टि से के आने वाले समय को, उस समय देखा होगा इस तरह के आविष्कार किए, कि कैसी क्वालिटीज उनमें होंगी।
जरूरी बात है, उन्होंने पहले समय में ही बैठ करके आने वाले समय को कैसे देख लिया। दो तीन बातें हैं उनकी पर्सनैलिटी में, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, कि वो अपने सब्जेक्ट पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दूसरी बात, एक दूसरे को कुछ देने की इच्छा है, उससे भी वो उस काम के प्रति अपने उस डेडिकेशन को लगन से लग पाते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर जहां तक हमने स्टडी किया, हम जानते हैं कि ये लोग इनोसेंटली प्योर होते हैं। ज्यादातर की लाइफ हिस्ट्री ये बताती है कि इनको आसपास के वातावरण से कुछ लेना देना नहीं था, किसी तरह की नेगेटिविटी से लेना देना ही नहीं है, तो उस देने की भावना में इतने एनग्रॉस हो जाते हैं कि वो रिजल्ट निकाल करके ही रहते हैं, और बीच में आने वाली बाधाओं को वो लोग नहीं देख पाते हैं। उनके अंदर एक त्याग भाव रहता है, उनके अंदर एक सेल्फलेसनेस रहती है, मुझे कुछ मिले ये भावना नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा संसार को सबको कुछ मिले। तो जैसे कि एक भाव हम भी लेकर के दुनिया में चल रहे हैं कि मैं ऐसा दुनिया में जीऊं जैसा कि सबके लिए प्रकाश दे दूं, जैसे दिया है खुद जल जाता है सबको रोशनी दे देता है, तो हम लोग भी अपनी लाइफ में याद रखते कि मैं एक महान आत्मा हूं, मेरा जन्म इस सृष्टि पर महान कर्म करने के लिए हुआ है, सिर्फ आए खाया पिया मर गए और अपनी हमने देखी सुविधाएं लग्जरीज और सिर्फ पर्सनल सक्सेस रेट नहीं, मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरे साथ पूरा संसार जुड़ा हुआ है, तो उस चेन के हिसाब से हम अपने जीवन को लीड करते हैं, तो हम बहुतों को बहुत कुछ देने का कारण बन जाते हैं।
बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, जो आपने अभी विशेषताएं बताई, एक दूरदृष्टि इंसान में, पेशेंस हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन की क्वालिटी है, दूसरों को देने की भावना है, त्याग की भावना होनी चाहिए, तो ये विशेषताएं जो है इसमें, जैसे आप आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई है, तो आध्यात्मिकता इस वृत्ति को अपने अंदर धारण करने में कैसे सहायक हो सकती है?
आध्यात्मिकता इसके लिए एक बहुत बड़ा पिलर है
जी,
क्योंकि आध्यात्मिकता में भी स्पेशली जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, अपने थॉट को स्लो डाउन करते हैं
जी।
जैसे स्लो डाउन करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं, और अपने अंदर की आवाज बहुत पवित्र आवाज होती है, जो झूठ नहीं बोलती है, और वो पवित्र आवाज सदा ये कहती है सबको दो, वो मांगने वाली आवाज नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा अनंत शक्तियों और खजानों से भरी हुई है। तो मेडिटेशन में हम पहले सोल कॉन्शियस होते हैं, फील करते हैं कि मस्तक के अंदर जो ज्योत चमक रही है उसके अंदर अनंत शांति अनंत शक्ति भरी हुई है, फिर उसको कनेक्ट करते परमपिता परमात्मा से और परमात्मा की पवित्र शक्तिशाली किरणों को अपने ऊपर उतरता हुआ महसूस करते है। और ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे अंदर एक तरह का ऐसा ठहराव लाती है जैसे दूरबीन बना देती है हमको। अब दूरबीन क्या है, दूर तक देख पाती है, तो अंदर का जो ठहराव है वो हमें ग्लोबल फैमिली की फीलिंग देता है, सब मेरे हैं, सब अपने हैं, इसलिए सबका दुख मेरा दुख है, अगर कोई को कष्ट है तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट और मुझे उसके लिए कुछ करना है। जैसे मैं थॉट जनरेट करती हूँ तो आई कैन फील कि मेरे शरीर के चारों तरफ से एक सुंदर प्रकाश का घेरा निकल करके दूर दूर तक फैलता जाता और सर्व आत्माओं तक जाकर के पहुंचता है। दूसरी बात, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर एक त्याग भाव लाते हैं और अपने अंदर कुछ करने की दृढ़ता पैदा करते हैं, क्योंकि बिना दृढ़ता के आपकी दूरदृष्टि बेकार है। तो आप दूर का एक पिक्चर देख करके, एक मंजिल देख करके कि वहां तक मुझे पहुंचना है, उसके लिए आप माइलस्टोन पैदा करते जाते हैं, रास्ता कवर करते जाते हैं। तो मेडिटेशन से जो पेशेंस डेवलप होती है, आंतरिक शांति और शक्ति की अनुभूति होती है, उससे वो दृढ़ता रहती है, आप काम को किए बिना आधे में छोड़ नहीं देते हैं, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक उसके लिए आप एक अथक प्रयास करते रहते हैं, टायरलेस रहते हैं, जील एंड एंथुजियाज्म बना रहता है और आपका जील आपका एंथुजियाज्म आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद करता है।
जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया आध्यात्मिक शक्ति से, लेकिन उसके लिए कॉन्सेंट्रेट, जैसे आपने कहा मन को पहले कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, आज की फास्ट लाइफ में वो व्यक्ति कर नहीं पाता, इसके लिए शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगी कि दीर्घदृष्टिता कहाँ कहाँ पर इसकी जरूरत ज्यादा होती है, दीर्घदृष्टिता कितने प्रकार के ये होते हैं और कहाँ कहाँ इनकी जरूरत हो सकती
है? जो दूरदर्शिता है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आप पूछिए
जीवन में कई जगह इसकी
कि भोजन खाने की कहाँ कहाँ जरूरत होती है, किस किस व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, सबको करना चाहिए क्योंकि भोजन से खून बनता है, शरीर की शक्ति बनती है, ऐसे ही ए टू जेड सबकी लाइफ में दूरदर्शिता की जरूरत है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी अगर दूरदर्शी नहीं है ना तो वो खड़ा होकर चलना भी नहीं सीख सकेगा, चाहे हिडन है
जी,
उसकी फार साइटेडनेस हिडन है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि वो चीज जो वहां पड़ी है ना, जब तक मैं जाऊंगा नहीं, मेरे हाथ में आने वाली नहीं है, उस चीज तक पहुंचने के लिए कभी वो घुटनों के बल रेंगता है, कभी वो गिरता पड़ता भी चल करके उस चीज को प्राप्त करने के लिए वहां तक जाता है। एक पढ़ने वाला बच्चा पहली क्लास में भी है तो भी उसको कुछ क्वालिफाई करना है, काउंटिंग सीखनी है, ये सीखना है, और बड़ा होने के बाद तो जैसे पढ़ाई को ले लो, कमाई को ले लो, चाहे आप बिजनेस किसी भी तरह का लो, या एक योद्धा है युद्ध के मैदान में जा रहा, उसको भी दूरदर्शी होने की जरूरत है कि सामने वाला जो मेरा दुश्मन है अगर मैंने इसके वार को नहीं रोका तो ये तो मेरे को ही मार डालेगा। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको अगला कदम सोच करके ये पहला कदम उठाने की जरूरत है ताकि आप अगले कदम में धोखा ना खा जाए।
पर कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में बैलेंस नहीं कर पाते हम, कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, तो उस समय दूरदृष्टिता तो दूर की बात है, हम वहां पर अपना मानसिक संतुलन ही बैलेंस नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम कैसे उस चीज को हैंडल करें?
मानसिक संतुलन जो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं ये वो लोग हैं जो किसी भी बारे में है तो दूरदर्शी है, वो भी दूरदर्शी लेकिन जरा उल्टे तरीके के दूरदर्शी है, उन्होंने उल्टी कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा सोच, वो इनसिक्योर फीलिंग्स वाले लोग हैं, इसलिए वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी दूरदृष्टि वाले कि अगर बच्चा स्कूल से लेट आया आए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर उसको चार पैसे का घाटा हो गया, कल को मेरी इतनी बदनामी हो जाएगी, खाने को रोटी भी नहीं रही तो, मकान भी नहीं रहा तो, वगैरह है वो दूरदर्शी, लेकिन जो भी प्रेजेंट सर्कमस्टेंस आ रहा है उसके पीछे छिपे हुए पॉजिटिव साइंस नहीं देख करके वो आज ही नेगेटिव सीन्स देख रहे हैं कि वो सामने जो डॉगी चार आ रहे हैं ना लड़ते हुए, पक्की बात है मेरे को काटेंगे। तो वो सीन इस तरह का होता है, समझो किसी की सासू माँ झगड़ा कर रही है, देखना अब इस घर में मेरी एडजस्टमेंट कैसे होगी। इसको हम कह देते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। परिस्थिति अपने आप में चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन अगर उसके पीछे वाला सीन आप पॉजिटिव बना सकते हैं, सासू माँ कितना भी लड़े मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो मेरी मम्मी ही इसने पैदा किया होता, मैं इसकी बेटी होती तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो वाला सीन उसको दिखाई दे रहा तो बैलेंस कर लेंगे
जी,
अगर उल्टे सीन दिखाई दे रहे तो नहीं कर सकते
जी। दीदी बहुत बहुत सुंदर और स्पष्ट रूप में आपने हमें इस नैतिक मूल्य के बारे में, इसके महत्व पर आपने दीदी प्रकाश डाला कि ये कैसे हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है, न दूरदर्शिता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है और इसे आध्यात्मिकता से हम अपने कैसे जीवन में लाए। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से और सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, जाना, सुना, कहते हैं जो हम बोते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है, अतीत का फल वर्तमान और वर्तमान का भविष्य होता है। तो इसीलिए जैसा कि अभी दीदी से भी हमने सुना कि आध्यात्मिकता का हम इसके लिए सहारा लें, इसके लिए हम अपने मन को पहले निर्मल स्थिर बनाएं, तो हम भविष्य के डिसीजंस बड़े स्पष्ट रूप से ले सकते हैं और वो दूरदर्शिता वाली क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है। तो आशा करते हैं कि आपने इस एपिसोड से इस नैतिक मूल्य के बारे में जरूर कुछ सीखा होगा, जाना होगा और आप अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए नैतिक मूल्य के साथ और नई पर्सनालिटी के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुन ही गुन भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा।